लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने बुधवारीय कार्यक्रम में कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्मसभा 2018 के अतीत, युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम, संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का सातवां अध्याय युवाओं की प्रेरिताई के बारे में जिक्र करता है। संत पापा युवाओं के संबंध में हमारी प्रेरिताई को धर्म सभा स्वरूप निरूपित करते हैं, जो हमें उनके साथ मिलकर चलने की बात कहती है। अपने कल के प्रसारण में हमने युवा प्रेरिताई के संबंध में संत पापा फ्रांसिस के दो क्रियाकलापों की चर्चा की, युवाओं के साथ हमारा संबंध स्थापित करने के तरीके और ख्रिस्तीय अनुभूति का विकास। कलिसियाई सिद्धांतों की बातों को उन्हें बतलाने हेतु उत्सुकता से पहले हमें चाहिए कि हम उनमें ख्रिस्तीय जीवन के अनुभवों को जागृत और सुदृढ़ करने का प्रयास करें। श्रोताओ, कोई शिक्षण परियोजना या युवाओं का विकास हमें उनमें ख्रिस्तीय सिद्धांतों और नैतिकता की बातों को बतलाने और पढ़ाने की मांग करती है। इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ईश्वरीय सुसमाचार का विकास, जो हमारे लिए ईश्वरीय मिलन की अनुभूति का मूलभूत आधार है, जहां हम यीशु ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान पर चिंतन करते हैं। वहीं दूसरा, भ्रातृत्व प्रेम में विकास है, जहां हम सामुदायिक जीवन की सेवा में अपने को देते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि इन बातों को मैं एवेंजेलिक गाउडियम में जोर देता हूँ और इसे यहाँ दोहराना उचित समझता हूँ। यह अपने में एक बड़ी गलती होगी यदि हम ऐसा सोचते हैं कि युवाओं की प्रेरिताई के संबंध में सुसमाचार के बदले हमें युवाओं को एक ठोस प्रशिक्षण देने की जरूरत है। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो सुसमाचार की घोषणा के आधार पर दी गई शिक्षा से अधिक ठोस, गहरी, निश्चित, अर्थपूर्ण और विवेक से भरी हो। सभी ख्रिस्तीय शिक्षण का आधार सुसमाचारी गहराई में प्रवेश करना है, जहां हम मुक्तिदाता यीशु के मरण और पुनरुत्थान को अपने जीवन में जीते हुए इसे अपने सभी कार्यों में साक्ष्य स्वरूप प्रकट करते हैं। अतः युवा प्रेरिताई अपने में सदैव ऐसे अवसर उत्पन्न करे जहां युवा पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त और उनके प्रेम को अपने में अंगीकृत करते हुए उसे व्यक्तिगत रूप में और भी गहरा बना सकें। यह इसे कई रूपों में कर सकता है। साक्ष्यों को प्रस्तुत कर, संगीत आराधना द्वारा, पवित्र धर्म ग्रंथ के पदों पर मनन चिंतन के द्वारा, यहाँ तक कि बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से संचार माध्यमों का उपयोग करते हुए। यद्यपि इस आनंदमय ईश्वरीय मिलन से अपनी अनुभूति को किसी भी रूप में एक तरह की शिक्षा का स्वरूप ना दें। दूसरी ओर, युवा प्रेरिताई को अपने में चाहिए कि वह अपने कार्यक्रम में उन विभिन्न माध्यमों और साधनों का उपयोग करे जो युवाओं को भ्रातृत्व की भावना में बढ़ने हेतु मदद करती है। वे एक दूसरे के संग भाई बहनों के रूप में एक दूसरे की सेवा करते हुए समुदाय का निर्माण करते, दूसरों के लिए सेवा, गरीबों के निकट रहने में उनके लिए सहायक होते हैं। यदि भ्रातृत्व में प्रेम नई आज्ञा है जो संहिता की परिपूर्णता है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को अपना सर्वोत्तम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, तो यह युवाओं के प्रशिक्षण में और उनकी प्रौढ़ता को प्राप्त करने में इसे एक महत्वपूर्ण स्थान देने की जरूरत है। संत पापा फ्रांसिस युवाओं के संबंध में प्रेरिताई के महत्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि हमारे संस्थानों को चाहिए कि वे अपने में बेहतर तरीके से सुसज्जित हों, जिससे वे युवाओं का स्वागत खुले रूप में कर सकें, क्योंकि बहुत से युवा हैं जो अपने में अनाथ होने की अनुभूति करते हैं। यहाँ संत पापा फ्रांसिस पारिवारिक समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट नहीं कराते हैं, वरन युवा युवतियों, युवा और वयस्क माता पिता और बच्चों के द्वारा अनुभव किए गए कुछ समस्याओं के बारे में कहते हैं। ऐसे अनाथों के मध्य हम अपने को भी पाते हैं। समुदाय जैसे कि एक पल्ली या विद्यालय को चाहिए कि वह अपने खुलेपन में हमें प्रेम की अनुभूति कराए, जिससे हम अपने में सुदृढ़ रहते हुए अपना विकास कर सकें। बहुत से युवा हैं जो अपने आप में इस बात का अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अपने माता पिता दादा दादियों के असफल सपनों को वहन किया है, जो अन्याय, सामाजिक हिंसा, स्वार्थ और एक दूसरे की चिंता के अभाव में उत्पन्न हुए हैं। हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वे अपने में जड़ विहीन होने का अनुभव करते हैं। यदि युवा अपने को राख की दुनिया में बढ़ता हुआ पाते तो अपने सपनों की आग और परियोजनाओं को अपने में बनाए रखना उनके लिए कठिन हो जाता है। यदि वे अपने जीवन में अर्थहीनता के खालीपन में बढ़ते तो अपने में समर्पित जीवन हेतु बीज बोने की चाह वे कहां से विकसित कर पाएंगे। अलगाव, बिछुड़न और मूलभूत निश्चितताओं का बिखराव जो आज के संचार माध्यमों द्वारा परोसा जाता है, उनमें एक गहरे अनाथपन की भावना को विकसित करता है, जिसका सामना करने हेतु हमें एक सुंदर और आकर्षित वातावरण तैयार करने की जरूरत है, जिससे दूसरे अपने जीवन के लक्ष्य को जीने के योग्य बन पाएं। एक शब्द में घर का निर्माण करना एक परिवार का निर्माण करना है। यहाँ हम अपने को परिवार में उपयोगितावादी और व्यवहारिक बंधनों से अधिक एक दूसरे के संग जुड़ा हुआ अनुभव करते और सीखते हैं। एक दूसरे के संग हमारा इस तरह का संबंध हममें इस बात की अनुभूति लाती है कि मानव के रूप में हमारे जीवन का अर्थ अपने में कितना महत्वपूर्ण है। घर का निर्माण हमें स्वयं को उदासीनता और गुमनाम की स्थिति से बाहर निकलने की मांग करता है। यह हमें एक दूसरे के संग अपने दिनचर्या के कार्यों में जुड़े रहने की बात कहती है, जिसे हम रोज दिन के जीवन में करते हैं। एक घर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हममें से प्रत्येक जन से कार्य करने की मांग करता है। यह हमें दूसरों को क्षमा करने और हर रोज एक नए दिन की शुरुआत करने का आह्वान करता है। मैं कितनी बार क्षमा करूं और पुनः नए सिरे से शुरुआत करूं? 70x7 बार, अर्थात जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार। एक सुदृढ़ और मजबूत संबंध की स्थापना हमसे विश्वास और भरोसे की मांग करती है, जो हमारे जीवन में धैर्य और क्षमाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा करने के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। हम अपने में यह अनुभव करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रेम और स्नेह का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, जो मानवीय जीवन के हमारे सपनों को साकार करती, जहां हम अपने को दिव्यता के संसार में प्रवेश करता हुआ अनुभव करते हैं। श्रोताओ, हमने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
जीवन जिसने दिया करे शत शत नमन उसका। जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। प्रभु हमारा है जीवन आधार, उसकी कृपा है अनंत अपार। वो जीवन दे सबको उसकी करे हम जय जय का। जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका। जीवन जिसने दिया ये जीवन है उसका।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ईश्वर हमें भविष्यवाणी जैसे अनोखे कार्य करने के काबिल बना सकते हैं, बशर्ते कि ईश्वर को हम अपने अंदर कार्य करने की अनुमति दें। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार 22 जुलाई को एक ट्वीट प्रेषित कर सभी विश्वासियों से ईश्वर की ओर आने की चुनौतियों के प्रति खुला रहने की प्रेरणा दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, भविष्यवाणी तब जन्म लेती है जब हम अपने आप को ईश्वर द्वारा चुनौती देने की अनुमति देते हैं, तब नहीं जब हम सब कुछ शांत और नियंत्रण में रखने का प्रबंध करते हैं। उधर यूरोपीय संघ के नेताओं ने 1.82 ट्रिलियन यूरो यानी 2.1 ट्रिलियन डॉलर के बजट और कोरोना वायरस स्वास्थ्य लाभ फंड पर ऐसे समय सहमति व्यक्त की है जब यूरोपीय संघ अपने इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मंदी से निपट रहा है। कई दिनों के कठिन वार्ता के बाद 27 देशों के यूरोपीय संघ ब्लॉक 750 बिलियन यूरो कोरोना वायरस स्वास्थ्य लाभ फंड पर आम सहमति पर पहुंच गया। यह कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुश्किल में पड़े देशों को ऋण और अनुदान के रूप में भेजा जाएगा। यह लगभग 7 वर्षीय 1 ट्रिलियन यूरो यूरोपीय संघ के बजट पर आता है। लंबी बातचीत के बाद शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूरोप के लिए एक कदम आगे बढ़ाए गए परिणामों की प्रशंसा की। चार्ल्स मिशेल ने पत्रकारों से कहा, मुझे विश्वास है कि इस समझौते को यूरोप की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाएगा। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेयर ने कहा कि पैकेज में अब सदस्य देशों द्वारा अधिक तकनीकी वार्ता का सामना करना पड़ेगा और यूरोपीय संसद द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, इस बार सदस्य देशों ने एक अंतर सरकारी समझौते का विकल्प नहीं चुना है, लेकिन उन्होंने यूरोप की वसूली के साथ यूरोपीय आयोग को सौंपा है। शुक्रवार तड़के ब्रसेल्स में शुरू हुई इस शिखर सम्मेलन में 90 घंटे से अधिक तनावपूर्ण वार्ता हुई। यह 2000 में फ्रांसीसी शहर नीस में हुई बैठक के बाद यूरोपीय संघ का सबसे लंबा शिखर सम्मेलन है, जो 5 दिन तक चला। और यूरोपीय संघ के नेताओं द्वारा 750 बिलियन यूरो कोरोना वायरस स्वास्थ्य फंड और ब्लॉक के दीर्घकालिक बजट पर मंगलवार को समाप्त हुए ऐतिहासिक समझौते पर प्रतिक्रिया करते हुए कार्डिनल जीन क्लाउड होलरिच ने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह एक समाधान है जो यूरोपीय संघ की एकजुटता को व्यक्त करता है। ब्रसेल्स में 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन के कुछ ही घंटों बाद वाटिकन न्यूज से बात करते हुए कार्डिनल होलरिक, यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वे इस सौदे के लिए आभारी हैं, क्योंकि यूरोप एकजुटता के बिना बोधगम्य नहीं है। महाधर्माध्यक्ष होलरिक ने यह उम्मीद जताई कि स्वास्थ्य लाभ फंड सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं और सबसे बड़ी महामारी से ऊपर उठने और जरूरतमंद लोगों को मदद करेगा जो यूरोपीय संघ का गठन करते हैं, ताकि अगली पीढ़ी भी शांति से और निश्चित समृद्धि में रह सके। उधर कोरोना वायरस महामारी के कारण थाईलैंड छोड़ने के लिए मजबूर किए गए प्रवासी श्रमिकों को आने वाले हफ्तों में फिर से काम के लिए वापस आने की अनुमति दी जाएगी। थाईलैंड उन देशों में से एक रहा है जो इस बीमारी को रोकने में सफल रहे हैं। अब तक इसने 3,250 मामले और 58 मौतें दर्ज की हैं। इसी के मद्देनजर जल्दी ही उन प्रवासी कार्यकर्ताओं को वापस काम पर आने की अनुमति दी जाएगी। थाईलैंड का कोविड-19 स्थिति प्रशासन केंद्र ने कहा कि जो विदेशी कामगार मेलों के आयोजन करने में मदद करने के लिए एशियाई देशों की यात्रा करते हैं या जो फिल्म निर्माण में काम करते हैं, वे भी प्रवेश कर सकेंगे, बशर्ते उनके पास उनके निश्चित नियोक्ताओं की गारंटी हो। उका समाचार एजेंसी अनुसार देश में प्रवेश करने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए 14 दिन की संगरोध अवधि होगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का कहना है कि मार्च के अंत में कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के हजारों प्रवासी श्रमिक अपने देशों और समुदायों में वापस चले गए। कई कारकों ने वापसी के लिए प्रेरित किया, जैसे बैंकॉक का आंशिक लॉकडाउन जिसमें कोविड-19 महामारी के फैलने का डर था। प्रवासियों ने अपनी नौकरी खो दी या खोने की उम्मीद थी, और राष्ट्रीय सत्यापन प्रणाली के तहत प्रवासियों के कार्य परमिट की अवधि समाप्त होने पर थी। उधर दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए ऋण राहत को मंजूरी देने के बाद G20 वित्त मंत्रियों ने घोषणा की कि ऋण निलंबन पर आगे के फैसले इसकी अगली बैठकों के लिए स्थानांतरित कर दिए गए हैं। G20 के वित्त मंत्रियों ने घोषणा की है कि आगे के ऋण निलंबन, स्थायी ऋण में कटौती और कोविड-19 संकट से पीड़ित देशों के लिए ऋण राहत का विस्तार इस साल के अंत में होने वाले बैठकों के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने शनिवार को वैश्विक स्वास्थ्य संकट के आर्थिक प्रभावों पर G20 वित्त मंत्रियों की एक आभासी बैठक के बाद एक बयान में घोषणा की। और विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के फैलाव के बचाव के लिए ऐतिहासिक उपायों के मद्देनजर यात्रा संबंधी पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनसे लाखों नाविक भी प्रभावित हुए हैं। घर परिवार से दूर समुद्र में फंसे नाविकों के लिए गहरी और लंबी अनिश्चितता जल्द खत्म होती नजर नहीं आ रही है, और मौजूदा हालात उनका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित कर रहा है। 33 वर्षीय फिलीपींस के एक नाविक ने कहा, मैं थका हुआ, शक्तिहीन और नाउमीद महसूस कर रहा हूँ। मुझे समुद्र में रहते हुए पहले ही 12 महीने का समय हो चुका है और मुझे नहीं मालूम अपने बच्चों और परिवारों को कब देख पाऊंगा। यह बेहद हताश कर देने वाला है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।